Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन बालक नचिकेता को मालूम है मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। बालक नचिकेता ने पुनः प्रार्थना की। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आपकी द्वितीय वल्ली का 14वां श्लोक है और इस श्लोक में उन्होंने इतनी सुंदर बातें कही हैं। इस श्लोक को पढ़कर के आपको यही नहीं मालूम पड़ता है ये प्रश्न ही की उत्तर है। इस प्रश्न को आप पढ़ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रश्न है कि उत्तर है। उन्होंने परमात्मा की भी खबर दे दी, पूछ रहे हैं परमात्मा के बारे में और स्वयं परमात्मा के बारे में ही खबर दे रहे हैं। बोले परमात्मा कैसे हैं, वो परमात्मा की खबर दे रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं परमात्मा के बारे में। आप बता भी रहे हैं परमात्मा कैसे, बोले धर्मात अन्यत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आप जहां तहां जो बड़े महापुरुष प्रवचन करते हैं या बड़ी बड़ी भाष्यादि ग्रंथ लिखे जाते हैं वहां पर इसका उदाहरण दिया जाता है। इतना महत्वपूर्ण मंत्र है वो, परमात्मा की सच्ची खबर भी दे रहे हैं। धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र, वो परमात्मा धर्म से भी परे हैं अधर्म से भी परे हैं। जो परमात्मा कालातीत है, कार्य कारण से परे हैं। बोले ऐसे परमात्मा के बारे में जो आप देखते हो, बोले वो कहो हमारे लिए। आज बालक नचिकेता ये परमात्मा के सूचना के साथ प्रश्न क्यों कर रहे हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कम से कम जान तो जाए गुरु कि आप कितना जानते हैं, तभी तो आपको उससे परे की साधना, उससे आगे की साधना बता देंगे। आज बालक नचिकेता के दो भाव हैं। मानो बालक नचिकेता कहना चाहते कि इतना तो मैं जानता हूं, वो परमात्मा ऐसा है इतना तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं उसका अनुभव नहीं करता हूं। आप उसका अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में तीन चीजें होती हैं, एक जानकारी, दूसरी मान्यता और तीसरी अनुभूति। जानकारी बुद्धिजन्य होती है, मान्यता श्रद्धाजन्य होती है और अनुभूति योग्यताजन्य। जितना ज्यादा बुद्धिमान आदमी होगा उतना ज्यादा जानकार होगा, जो भी चीजें वो सुनेगा, जो पढ़ेगा, जो देखेगा उसकी वो स्मृति बन जाएगी। बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करेगा, बुद्धिमान आदमी भूलेगा नहीं। आप दुनिया की कोई खबर पूछो। एक हमारे पास एक ऐसा आदमी मुंबई में, आप मुंबई का कोई रास्ता पूछो उसको, आप पूछना उसको अनुमुख ऑफिस कहां पर है मुंबई, वो बता देगा अमुक जगह पर है, और वो सोचता भी नहीं है, यूं बोल देगा वो। उसका दिमाग नक्शे को पकड़ता है और उसकी मेमोरी इतनी अच्छी है, बहुत सारी चीजें उसने स्टॉक कर रखा है टेप रिकॉर्डर की तरह। ऐसे बहुत बुद्धिमान लोग मिलेंगे, धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं, लेकिन सूचना सारी होगी। आप पूछो गीता के बारे में, वो चट से बता देगा। हमने देखा ऐसे बहुत, ऐसे बहुत बड़े बड़े पंडित देखे हैं। आप पूछना ये बात किस ग्रंथ में लिखी, वो बता देगा इस ग्रंथ में लिखी है। जानकारी है, आप जितना पढ़ते जाएं बहुत सारी जानकारी आपको होगी, लेकिन श्रद्धा के अभाव में वो जानकारी केवल जानकारी रह जाती है। और जिस जानकारी के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है वो जानकारी जानकारी नहीं रहती, वो जानकारी मान्यता बन जाती है। आप वो मानना शुरू कर देते हैं, जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं। आप इस्लाम के बारे में जानते हैं लेकिन मानते नहीं, आप बोलते भी तो हैं, आप बोलते भी तो हैं कि हम जानते तो हैं लेकिन उनको मानते नहीं है। या कई बार ये भी तो बोलते हैं कि हम मानते थे, अब नहीं मानते। हमारी जानकारी मान्यता बन जाती है और मान्यता भी हमारी बदलती जाती है। जितनी बड़ी श्रद्धा उतनी बड़ी मान्यता। मान्यता माने स्वीकृति है ना। और दुनिया के जितने भी धर्म चलते हैं वो मान्यता पर चलते हैं। आप भगवान को जानते कि मानते हैं? आप भगवान को जानते भी हैं और उसको मानते भी हैं। बहुत सारे भगवानों को आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आपने देखा है क्या? भगवान को देखा नहीं? उसका अस्तित्व आपकी अनुभूति नहीं है। आप केवल उनको मानते हैं, श्रद्धाजन हैं। इसलिए जानकारी से श्रेष्ठ मान्यता और मान्यता से भी श्रेष्ठ होती है अनुभूति। आपने केवल माना नहीं, आपने उसकी अनुभूति की। जैसे आप मानते हैं वृंदावन है, कितने लोग होंगे जो वृंदावन गए होंगे? मानते तो है वृंदावन, लेकिन कोई गया, उन गलियों में घूमा, भगवान के दर्शन किए, यमुना के दर्शन किए, वो अनुभूति है। आप प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर रहे हैं। ये तीसरी चीज है हमारे जीवन की। बालक नचिकेता ने कहा कि मैं पहली चीज में हूं और दूसरी चीज में हूं, लेकिन तुम तो तीसरी चीज में हो। मैं तो केवल जानता हूं और बहुत सारी चीजें मानता हूं, लेकिन आप तो यत पश्यसि, आप अनुभव करते हो। यहां पश्यसि शब्द का प्रयोग किया वर्तमान। आप देखते हो उस परमात्मा का, आप अनुभव करते हो। और जो आपके अनुभूति का विषय परमात्मा है, बोले वो आप हमको कहो। हमका हमारी तो जानकारियां हैं, उसका क्या मूल्य है? हो सकता है कि नहीं, रामकृष्ण परमहंस से ज्यादा विवेकानंद जी जानते हो। आप पुस्तकें पढ़ना, विवेकानंद जी की बहुत सारी ढेर सारी पुस्तकें और रामकृष्ण परमहंस। आप जानकारी को लेकर के दोनों में तुलना करेंगे तो आपको कौन ज्यादा जानकार मालूम पड़ेगा? पक्का ना? आप डरो मत। आप जानकारी की तुलना करेंगे तो आपको रामकृष्ण परमहंस कम मालूम पड़ेंगे और विवेकानंद ज्यादा मालूम पड़ेंगे। लेकिन जब आप अनुभूति की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर कोई तुलना नहीं है। एक अनंत है और दूसरा जीरो पर खड़ा है। रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद जी गए, जानकार बन के गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर गए तो जानकार बन के गए। और कितने जानकार थे वो? घंटों। ईश्वर नहीं है, इस विषय पर घंटों बोलते रहे वो। और क्या हुआ फिर? ये सारी जानकारियां हवा हो गई, एक ही वाक्य में हवा। केवल जानकारी हो ना, केवल जानकारी, अनुभूति ना हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। और धर्म का रहस्य भी यही है। जिस धर्म में केवल जानकार लोग हो वो धर्म बहुत ज्यादा जिंदा नहीं रहता है, बहुत ज्यादा लंबा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता है, वो धर्म समाप्त हो जाता है। और जिस धर्म में जानकार के साथ साथ अनुभूति संपन्न लोग होते हैं, वो धर्म बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। सारे विचार नारायण वहां हवा है। जहां अनुभूति ना हो ना तो वहां सारे विचार कल्पनाएं हैं। अनुभूति के बिना सारे विचार हमारे कल्पनाओं की तरह हैं। वो कल्पनाओं की उड़ान, भले ही वो सत्य जानकारी क्यों ना हो। वास्तविक एक बात भी बहुत सारी जानकारियों को हवा की तरह उड़ा दे, एक ही जानकारी आपकी एक ही अनुभूति है और लाखों विचार आपके हैं उसको उड़ा देगी, अनुभूति है ना। आपने बहुत सारे प्रेम के ग्रंथ लिखे, आपने तैरने के बहुत सारे ग्रंथ लिखे, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है टेक्निकल, आपने तैरने को बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, कैसे प्रेम के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखते हैं, उसको पूछना कि तुमने प्रेम का अनुभव किया, ये तो नहीं किया है। आपने पुस्तक तो लिखी लेकिन प्रैक्टिकल आपने अनुभव नहीं किया है। हो सकता है भक्ति के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले आदमी और भक्ति के अनुभूति के बारे में पूछे तो शून्य हो, इसका कोई मूल्य नहीं। बालक नचिकेता ने यही बात कही, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जानकारियां हैं मेरे पास, ये भी जानकारी है, वो परमात्मा धर्म से परे हैं, अधर्म से परे हैं, कार्यकरण संघात से परे हैं, काल से परे हैं, ये भी जानकारी है और मैं मानता भी हूं, मान्यता भी है, शास्त्र पर श्रद्धा भी है, लेकिन आपकी अनुभूति है, इन तीनों से परे आप इस तत्व को जानते नहीं न मानते नहीं, उसको आप अपने जीवन में अनुभव करते हो। अनुभव बोले वो चीज जो आपकी अनुभूति का विषय है वो मेरे को कहो, यत पश्यसि तद वद। ये बहुत गहरी बात है, बालक नचिकेता जो पूछ रहे हैं ना बहुत गहराई से पूछ रहे हैं। बालक नचिकेता को मालूम है जानकारी तो हमारे पास भी है और केवल जानकारी से आप बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, मान्यता हमारी भी है, मान्यता तुम्हारी भी है, तो हमको क्या मिलेगा आपसे, एक नई मान्यता हम खड़ी कर लेंगे, एक नई जानकारी हम जुटा लेंगे, लेकिन हम केवल जानकारी या मान्यता को बढ़ाना नहीं चाहते, हम उसका अनुभव करना चाहते हैं। और अनुभव करने के लिए आपसे बड़ा कौन व्यक्ति होगा जो साक्षात उस तत्व का अनुभव करता है। अब हम लोग थोड़ा विचार करते कि इन्होंने जो बोला है अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। नारायण बालक नचिकेता ने यहां जो शब्द रखे हैं अंतिम सत्य परमात्मा के बारे में, आज बालक नचिकेता ये भी कहना चाहते हैं मैं चाहता क्या हूं, बालक नचिकेता की चाह क्या है। हमारे सामने परमात्मा की कई स्तर की अभिव्यक्तियां होती हैं, आपके सामने बहुत सामान्य रूप से धर्म की बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो अंतिम सत्य जो परमात्मा है वो कैसा है, तो यहां पर सूचना दे रहे अन्यत्र धर्मात्। ये बात भी बड़ी कठिन है, आप ध्यान देकर सुनना भैया, ये कठोपनिषद औपनिषद विद्या वेदांत विद्या ऐसे भी कठिन मानी जाती है, ये समझने भी कठिन और समझने के बाद इसको जीवन में धारण करना भी कठिन। वो परमात्मा धर्म से परे हैं, अधर्म से भी परे हैं। हम अपने जीवन में धर्म शब्द को श्रवण करते हैं, धर्म माने क्रिया, धर्म माने भावना, धर्म माने धारयति इति धर्म, एक सामान्य परिभाषा है जो दूसरे को धारण करे। धर्म में दूसरे के धारण करने की शक्ति होती है, तो दूसरे को धारण करने का अर्थ क्या है, जैसे आप सिर पर कोई बोझ धारण करते हैं, बोझ उठा लेते हैं, यहां वैसा धारण शब्द का अर्थ नहीं है। धारण करना मने जोड़े रखना, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, ये धर्म की परिभाषा है। बच्चे अपने माता पिता को धारण करते हैं, उसका मूल कारण क्या है, धर्म है। एक भाई भाई को धारण करता है, एक मित्र मित्र को धारण करता है, पति पत्नी को धारण करती है, पत्नी पति को धारण करती है, ये एक दूसरे की जो रिलेशन, एक दूसरे के साथ जो संबंध है और उन संबंधों को निभाने की जो प्रवृत्ति है, यही तो नारायण धर्म है। आपके अंदर धर्म है तो आप उसको निभाओगे, उन संबंध को निभाओगे। और यदि धर्म हमारे जीवन में ना हो ना, भाई भाई को धारण नहीं करें। अब आप रामायण को सामने रखना, रामायण में हर पात्र दूसरे को धारण कर लेता है, हर पात्र दूसरे के संबंधों को स्वीकार करता है अंतिम सत्य के रूप में, अंतिम सत्य के रूप में। अब वहां राम जब वनवास के लिए जाने लगे, सीता का क्या धर्म था? अपने पति को धारण करना, अपने पति को सहर्ष हर अवस्था में स्वीकार करना, वो धर्म था। ये धारण करना चल पड़ी भगवान श्री राम के साथ। लक्ष्मण का क्या धर्म था? बड़े भैया के साथ जाना। आपको एक एक पात्रों के जीवन में वो धारणा शक्ति, जो धर्म की शक्ति मालूम पड़ती है। ये धारणा शक्ति तो धर्म है, एक दूसरे को धारण करना, एक दूसरे को स्वीकार करना, दूसरे के विचार और मान्यता को आदर देना, सबसे बड़ा धर्म है। ये धारयति इति धर्म, धर्म के कारण ये पृथ्वी हमको धारण करती है, इसमें धारणा शक्ति है। बहुत सारी चीजें ये धर्म है, जैसे पृथ्वी में गंध, उसका धर्म धारण करता है उसको। पांचों भूतों में पांच शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों धर्म है, वो धारण करता है। और ये जो धारणा जो शक्ति है, ये हमारे भीतर का स्नेह सहानुभूति अंतर मन का भाव है और वो क्रियाओं में उतर आता है। ये क्रियात्मक भाव या विचारात्मक भाव या हमारे अंतर मन की भावना, ये धर्म है। धर्म का दूसरा भी अर्थ है, धर्म माने क्रिया। जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ये भी धर्म है, ये क्रियात्मक धर्म है। बालक नचिकेता ने कहा कि वो परमात्मा धर्म से परे हैं। धर्म से परे माने वो धर्म का साध्य है। आप धर्म कोई अंतिम सत्य न समझे, धर्म साधन है, उस परमात्मा को पाने का एक साधन है। धर्म जीवन का अंतिम सत्य नहीं, परमात्मा जीवन का अंतिम सत्य है। और धर्म एक क्रियात्मक भाव, हमारा आचरण है, वो साधन है, वो सिद्धि नहीं है, वो रास्ता है, वो मंजिल नहीं है। बालक नचिकेता बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। आदमी कई बार साधन कोई साध्य समझ लेता है, रास्ते कोई मंजिल समझ लेता है। और रास्ते कोई आपने मंजिल समझा तो आप कभी मंजिल को पाएंगे कैसे? हम केवल उसी में लगे रहते हैं। जैसे धन हमारे जीवन में साधने के साधने, हमारे जीवन में धन मधु बाबू साधने के साधने, साधन है। और साधन का अर्थ क्या है? साधन का अर्थ है छूटने वाला, साधन इसी अर्थ में है। आप साधन को जब तक छोड़ते नहीं तब तक आनंद नहीं आता है। साधन का अर्थ है जो छूटने वाली चीजें। आप जिस ट्रेन से आए वो आपकी साधन थी, और वो तभी तक आपके लिए आनंदपूर्ण है जब तक उसको आप छोड़ते नहीं है। पहले पकड़ो और बाद में छोड़ो। और यदि आपने छोड़ा नहीं ट्रेन को, पकड़ा घाट को, ऊपर से आए ट्रेन को पकड़ा, और उसके बाद आपका प्रेम हो गया, किससे क्या पता? आदमी का मन का क्या भरोसा किससे प्रेम हो जाए? आप आ रहे थे घाट को ऊपर से, हमारे गिरीश सिंह जी आए हैं, और प्रेम हो गया ट्रेन से, और आपने निर्णय लिया कि अब हमको ट्रेन नहीं छोड़ना है, चाहे भले किधर भी चली जाए। अब आप प्रेमपुरी में आएंगे कि नहीं? वो साधन है, उसकी सार्थकता तभी तक है आप उसको पकड़ो और उसको छोड़ो। तभी तो साधन बनेगी दूसरे साध्य को प्राप्त कराने के प्रति वो कारण बने, नहीं तो आपने साधन को ही साध्य मान लिया, रास्ते को ही मंजिल मान लिया, तो आप अपने जीवन के मंजिल को कब पाएंगे। धन साधन है, आप चले गए दुकान में बहुत भूखे, फल की दुकान में गए और वहां जाके आप बोलने लगे कि हमको ये फल दो, बोलेगा पैसा, बोले पैसा नहीं देंगे हम। वहां फल के आनंद को पाना हो तो आपको पैसे का त्याग करना पड़ेगा। आप पैसे का त्याग नहीं करोगे तो आप फल के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। आप बाजार में गए कपड़ा खरीदने के लिए और आपने कहा कि पैसा हम नहीं देंगे, हमको कपड़ा दे दो, देगा वो? आपको पैसा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए साधन है, धन अपने आप में साध्य नहीं है। बहुत करोड़पति आदमी हो, पैसा खाएगा? मैंने सुना है, बहुत पहले एक बार पढ़ा था मैंने, ये सच्ची घटना है पुराने जमाने की। एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी मरा और उसमें एक वाक्य लिखा था, मरते समय बोले मैं करोड़पति आदमी हूं उस जमाने का, लेकिन मैं एक मुट्ठी अनाज के बिना मर रहा हूं। मर गया वो, वाक्य लिखा वो मर गया बेचारा। वो हुआ क्या था, उसका बहुत बड़ा तहखाने में खजाना था और वो अंदर गया, बहुत बड़ा तहखाना और गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, उसको नहीं मालूम था कि मालिक अंदर है, बंद कर दिया, बाहर चौकीदारी कर रहा बेचारा, अंदर मालिक, बहुत बड़ा तहखाना, गुफा जैसी थी अंदर वो। पहले तो उन्होंने खूब अपना सोना चांदी हीरे मानिक मोती गिने, बहुत गिनता रहा, बड़ा आनंद आया उसको। और उसके बाद जब बाहर आए तो दरवाजा बंद, बंद तो बंद ही। अब वो भूखा प्यासा, अब वो क्या करता होगा, अब क्या करेगा, वो सोना चांदी खाएगा? मर गया, अपने खून से लिखा कि मैं करोड़पति हूं। मैंने बहुत कोशिश की, दरवाजा खोले कोई, खटखटाया, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही, मैं मर रहा हूं, एक मुट्ठी चावल अनाज के बिना मैं मर रहा हूं। बहुत ठंड है, बहुत सा धन पैसा है, क्या करेंगे आप, उसको ओढ़ेंगे? धन साधन है, धन एक रास्ता है, मंजिल नहीं। लेकिन आदमी धन के साथ व्यवहार कैसे करता है, मंजिल की तरह उसको ऐसे पकड़ता है नारायण, वो मंजिल की तरह बिना छोड़े, बिना धन छोड़े आपको आनंद नहीं देगा। और सत्य तो यही है, छोड़ने में आनंद है। इसलिए श्रुति ने कहा त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसो, त्याग में ही आनंद है। आप किसी को मददगार व्यक्ति को आप मदद करना, बड़ा आनंद आता है आपको, छोड़ने का एक अपना आनंद है। और ये खतरनाक भी है मधु बाबू, छोड़ने का आनंद किसी को मिल जाए ना, छोड़ने का आनंद किसी को मिल जाए, फिर आदमी छोड़ने के आनंद को छोड़ नहीं सकता है। अभी तक तो आपको पकड़ने के आनंद का पता है, अभी तक तो हमको खाने के आनंद का पता है, अभी तो हमें काम के आनंद का पता है, अकाम के आनंद का पता कहां है? अभी तो हमें क्रोध के आनंद का पता है, लेकिन अक्रोध में भी आनंद है इसका पता नहीं है। आसक्ति के आनंद का पता है, लेकिन निरासक्ति में जो आनंद है उसका पता नहीं। और एक बार मालूम पड़ जाए निरासक्ति में, अकाम होने में, अक्रोध होने में, त्याग में आनंद क्या है मालूम हो जाए, फिर आदमी उस आनंद को नहीं छोड़ सकता है, वो एक नशा है, उसका आकर्षण बहुत गहरा है। जिस व्यक्ति के भी जीवन में उसका पता हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे उस आनंद को प्राप्त हो जाता है। धर्म एक साधन है, धर्म भी एक साधन है, और वो धर्म साध्य की तरह न पकड़े, एक साधन की तरह हो। हमारा लक्ष्य परमात्मा है और वो जो क्रियाएं अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन आदमी उन क्रियाओं को ऐसा पकड़ता है जैसे कि मानो वो अंतिम सत्य हो। बालक नचिकेता ने कहा कि हमारे जीवन में जो भी धर्म है वो परमात्मा को पाने का साधन है, परमात्मा को पाने का रास्ता है, मंजिल नहीं है। इसलिए हमें अटकना नहीं, ये संसार की सारी चीजें परमात्मा को पाने के साधन है और सत्य ही, ये शरीर साधन के साथ नहीं, साधन है। ये हमारी आंख साधन है, कान हमारे साधन है, पैर हमारे साधन है, हम भोजन करते साधन है, ये संपूर्ण शरीर और इस शरीर की गतिविधियां ये सब साधन है, लेकिन हम साध्य की तरफ मंजिल की तरह इसको पकड़ते हैं। बालक नचिकेता ने कहा जीवन का जो लक्ष्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमारे जीवन का अंतिम सत्य परमात्मा है, आत्मा है, और ये सारी चीजें साधन रूप में है। ये जितनी भी चीजें हमारे जीवन में है सारी चीजें साधन रूप है, और साधन रूप होने का अर्थ है ये छोड़ते जाना चाहिए, ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने को कम से कम मन से तो छोड़ते जाए। भले हम तन से नहीं छोड़ पा रहे लेकिन मन से तो वैराग्य हो, ये आवश्यकता के रूप में सारी चीजें स्वीकार करें आवश्यकता के अनुसार, लेकिन मन में उसके प्रति बहुत बड़ा पागलपन ना हो, बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ी आसक्तियां ना हो। धर्मात अन्यत्र, बोले अधर्मात अन्यत्र, जब वो धर्म से परे हैं तो अधर्म से भी परे हैं। हम अपने जीवन में अधर्म का आचरण कर उस परमात्मा को नहीं पा सकते, हम असत्य का अनुकरण कर सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते, हम बेईमानी का आचरण कर हम ईमानदार नहीं बन सकते, असत्य का आचरण कर हम सदाचारी नहीं बन सकते। इसलिए बालक नचिकेता ने कहा कि वो धर्म से भी परे हैं और वो अधर्म से भी परे हैं। ऐसा जो तत्व आत्म तत्व उसका आप हमको प्रतिपादन करके बताओ, बड़ा सुंदर प्रश्न है, इस विषय कल करेंगे, आज प्रवचन को यही विराम, आप सीधे बैठ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।